जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, गोपीजन वल्लभ गिरिवर धारी, गोपीजन वल्लभ गिरिवर यशोदानंदन ब्रज जनरंजन, यशोदानंदन ब्रज जनरंजन, जमुना तीर जमुना तीर वन चार His divine grace Srila Vaicharana Ravinda Bhakti Danta Swami Jagat Guru Srila Prabhupada Ki Jai. His conviviti founder Acharya Jagat Guru Srila Prabhupada Ki Jai. Om Vishwapada Paramahamsa Parivrajaka Acharya Ashtottara Satashi Shimat. His divine grace Srila Bhakti Siddhanta Sasrut Thakur Maharaj Srila Prabhupada Ki Jai. Ananta Koti Vaishnavrinda Ki Jai. Namacharya Srila Haridas Thakur Ki Prems Kahosi Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadhar Shiva Shanti Gaur Bhakta Vrinda Ki Jai. Sri Radha Krishna Gopinath Shyama Kunda Radha Kunda Giri Gaurdhan Ki Jai. Brajavi Vrindavan Dham Ki Jai. Navadip Mahapur Dham Ki Jai. Jagannath Puri Dham Ki Jai. Ganga Mai Ki Jai. Jamuna Mai Ki Jai. Bhakti Devi Ki Jai. Samavita Bhakta Vrinda Ki Jai. Nitai Gaur Premanande. All glorious to assemble devotees. All glorious to assemble devotees. All glorious to assemble devotees. Glorious to Sri Sri Guru and Sri Gauranga. Om namo bhagavate vasudevaya. Om namo bhagavate vasudevaya. Om namo bhagavate vasudevaya. आज हम श्रीमद् भागवतम का सातवां अध्याय सातवां स्कंद पंद्रहवां अध्याय और श्लोक संख्या 71 नारद मुनि यहाँ अपने पूर्व जीवन कई अतीत एक बार ऐसी घटना हुई थी उसके अगले जन्म में वो याद है. ज़्यादातर हमें अपने पूर्व जन्म में हम क्या थे हमें पता नहीं. लेकिन यहाँ काफ़ी ऐसे पहुँचे हुए विशुद्ध भक्त होते हैं जिनके बारे में कहना क्या. तो यहाँ वो अपना पूर्व जीवन का वृत्तांत एक आदि बरहण का वृत्तांत बता रहे हैं. एकदा देवसत्रे तो गंधर्व अप्सरसाम गणाः उपहुता विश्वसृग हरि गाथो उपगायने. एकदा देवसत्रे तु गंधर्वाप्सरसां गणः उपहुता विश्वसृग्भिः हरि गाथोपगायने. एकदा देवसत्रे तु गंधर्वाप्सरसां गणाः उपहृता विश्वसृग्भिः हरिगाथोपगायने. ekada deva satpreto gandharvapsarar samganaha upahruta vishvasrutbir hari gathopagayane.
एक बार
देव सत्रे
देवताओं की सभा में
तो
निसंदेह गंधर्व गंधर्व लोक के बासी अप्सरसाम तथा अप्सरा लोक के निवासियों के गणाहा सभी उपहुता बुलावे गए थे विश्वसरूप भी प्रजापति नामक बड़े बड़े देवताओं के द्वारा हरि गाथ उपगायने परमेश्वर की महिमा गायन के लिए कीर्तन के समय अनुवाद और तात्पर्य शिष्य मध्य से भक्तिविधान स्वामी श्रील प्रभुपाद के द्वारा एक बार देवताओं की सभा में परमेश्वर की महिमा के गायन हेतु एक संकीर्तन उत्सव किया गया था जिसमें गंधर्वों तथा अप्सराओं को भाग लेने हेतु प्रजापतियों ने आमंत्रित किया. संकीर्तन का अर्थ है श्री भगवान के पवित्र नाम का कीर्तन करना. हरे कृष्ण आंदोलन कोई नवीन आंदोलन नहीं है. जैसा कि मनुष्य कभी कभी असत्य सोचते हैं, हरे कृष्ण आंदोलन ब्रह्मा जी के जीवन के प्रत्येक युग में विद्यमान रहा है और पवित्र नाम का कीर्तन ब्रह्मलोक तथा चंद्रलोक सहित सभी उच्च लोकों में किया जाता है. गंधर्वलोक तथा अप्सरलोक की तो बात ही क्या है. अतएव आज से 500 वर्ष पूर्व इस संसार में श्री चैतन्य महाप्रभु द्वारा शुरू किया गया संकीर्तन आंदोलन कोई नया आंदोलन नहीं है. कभी कभी हमारे दुर्भाग्य के कारण इस आंदोलन को रोक दिया जाता है, परंतु श्री चैतन्य महाप्रभु तथा उनके सेवकगण समग्र विश्व के या यूं कहे तो समग्र ब्रह्मांड के लाभ हेतु इस आंदोलन को फिर से प्रारंभ करते हैं. ओम ज्ञानतिमिरंदस्य ज्ञानंजन शलाकया चक्षुर्मिलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः. श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदांतिकं. वंदेहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश श्रीरूपं साग्रजातं सगणा रघुनाथान्वितां तं सजीवं
साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादां सगणा ललिता श्री विशाखान्वितांश्च हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिय वांछाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः नमः ॐ विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश सारिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे
एक बार देवताओं की सभा में परमेश्वर की महिमा के पवित्र गायन हेतु एक संकीर्तन उत्सव किया गया जिसमें गंधर्व तथा अप्सराओं को भाग लेने के हेतु प्रजापतियों द्वारा आमंत्रित किया गया। ये तो उच्च लोकों की बात है लेकिन भगवान का नाम गीयते सर्वत्र, सर्वत्र भगवान का नाम गाया जाना क्योंकि अनादिकाल की प्रवृत्ति है। भगवान ने बारंबार अपने नाम का कीर्तन का साधन देकर ही सारे विश्व का पुनः उद्धार किया है। जब कीर्तन रुक जाता है तो संसार में आपत्ति आ जाती है। भगवान के गुणगान में भगवान की ख्यातियों इनकी गुणवत्ताओं दिव्यताओं का परिचय होता है। जो दिव्यता आध्यात्मिक स्तर पे होती है तो भौतिक स्तर के जो शक्ति है उस पर हावी हो जाती है और हमेशा वो व्यवस्था बनाए रखने के लिए भगवान स्वयं आते हैं, अपने अवतारों को भेजते हैं या शक्तिमान किसी को अपनी ही आध्यात्मिक शक्ति प्रदान करके उनके द्वारा कीर्तन की महिमा फैलाने के लिए। ये सारा सिद्धांत है अनादिकाल से एक ही रहा है। कलयुग में ही नहीं है, इतना ही नहीं, हर एक युग में अंततो गत्वा भगवान का नाम का कीर्तन ही उद्धार करता है। हम तो चार युगों में बंटवारा कर देते हैं, सत्य त्रेता द्वापर और कली। तो सत्ययुग में तपश्चर्या को ज्यादा महत्व देते हैं लेकिन नहीं, महत्व तो हरि कीर्तन को ही होता है। लेकिन ऐसे जमाने में जहाँ इतना फ्री टाइम लंबे समय तक मिलता है तो तपश्चर्या करो। जो तपश्चर्या नहीं करते हैं तो वो इंद्रिय तृप्ति में व्यस्त हो जाएंगे। तो हरि कीर्तन की तो बात ही क्या, हरि कीर्तन ही एकमात्र व्यवसायात्मिका बुद्धि भी कहलाती। आत्मा का व्यवसाय हरि कीर्तन करने का है। जो भोग और ऐश्वर्य में प्रसक्त हैं उसको तो हरि कीर्तन का ख्याल आता ही नहीं। क्योंकि कोई भी धर्म कोई भी उपाय ये न तीन प्रकार मन कृष्णम निवेश युग बदल जाते हैं, कोई धर्म का ढांचा बदल देता है कोई, लेकिन अंत तो गत्वा हरि कीर्तन, भगवान के नाम का कीर्तन गुणगान, भगवान की ख्याति, ये सब इनका ही परिचय, नाम रूप गुण और लीला। एक किसी मनुष्य के लिए कोई उसका इतिहास नहीं रहेगा, कोई भी जीव के लिए उसका इतिहास नहीं रहेगा। जब हमें डाउट होता है क्या होगा अगले अगले जन्म में क्या होते हैं, तो अज्ञानी को के लिए तो भगवान सीधा उत्तर देते, बहुनीते जन्मानी बहुनीते व्यतीतानी जन्मानी तव चार जन्म, तेरे और मेरे अनेक जन्म हो गए लेकिन तू उनको जानता नहीं है, मैं जानता हूं सबको। तो चेतना का विकास कितनी हद तक होना चाहिए जो हमें पता ही चलता है कि हम पूर्व जन्म में क्या थे। कल फिस्ट में क्या खाया था याद है, मुश्किल ही आएगी। था आप अगले जन्म में क्या थे। लेकिन एक तरफ भगवान कहते हैं सामान्य मनुष्यों के लिए जो विषय आ सकते हैं, देहा सकते हैं, परिवार पर आ सकते हैं, ऐसे अर्जुन को कहते हैं कि तू तो भूल ही जाएगा, इसमें नवाई क्या है, नई चीज कुछ नहीं। लेकिन वैसे तो नारद मुनि अपनी स्वयं की गाथा कहते हैं, वो कहते हैं एक जन्म में मुझे याद है बहुत बड़ा सबक मिला था, सबक से ही हम याद रख सकते हैं, तो ऐसा सबक एक जन्म में मिला था उसे अभी याद है, उसका वर्णन कर रहे हैं। ये याद करने के पीछे कितने विषय की चर्चा हो सकती है, इतिहास की, उनके क्या बात हुई थी पहले, और ऐसा सबक वो हमेशा क्यों याद रखना चाहते हैं। दूसरे जन्म तो कीट जन्म होता है तो हमें तो कुछ याद नहीं रहता है, कीट अपना काम करेगा, लेकिन ब्रह्मा भी यदि भगवान की प्रशस्ति करने के लिए सक्षम नहीं है तो उसका जन्म भी व्यर्थ जाता है। दासत्व भगवान के गुण गाथा तो दास ही कर सकते हैं, तो दासत्व का कितना प्रकार बताया है ये ऊर्ध्व लोकों में, यानी कि चंद्रलोक से लेकर ये गंधर्व लोक अप्सरा लोक ये बड़े बड़े वहां तक कि अपने पूर्व जो पितृलोक में भी एक ही मात्र उपाय है, जो यहां उपाय दिया है वो वहां नहीं होगा क्या। आयोजन तो सब करते रहते हैं, पदयात्रा का आयोजन कर रहे हैं, सारे विश्व में पद यात्रा हो गई है, हरि कीर्तन ही एकमात्र माध्यम रहता है पद यात्रा का, इसमें जो जो जुड़े हैं वो हरि कीर्तन, क्योंकि एक ही सततम स्मर्तव्यम विष्णु विस्मर्तव्यम न जातु चित सर्व विधि निषेधो स्यु हेतयोरेव किंकर। विधि और निषेध आती है जाती है लेकिन किसी न किसी बहाने किसी न किसी उपाय से ये जो मुख्य सिद्धांत है सततम स्मर्तव्यम विष्णु, वो चालू रहना चाहिए। वो हरि कीर्तन के अलावा कैसे चालू रहेगा? चैतन्य महाप्रभु ने संकीर्तन जगह, वो एक जगह बैठकर संकीर्तन करना ही करता नहीं, चलते फिरते जाओ सब जगह संकीर्तन की महिमा बढ़ रही है। प्रभुपाद जी के पुस्तकों के वितरण में हर एक पन्ने पर लिखा होता है कि कृष्ण महामंत्र चार। प्रभुपाद जी तो इतने आतुर हैं कि ये महामंत्र की असर पड़ रही है कि नहीं सब जगह, तो अखबार में भी देखते हैं कि क्या यदि कोई कोई समाचार छपे हैं तो उसमें हरे कृष्ण महामंत्र कितनी बार लिखा है वो। तो केवल एकमात्र जो हमारा आत्यंतिक कारण होना चाहिए वो हरि कीर्तन। पहले से ही हरि कीर्तन, अंत में भी हरि कीर्तन। तो ये जन्म में ऐसा हरि कीर्तन, हम तो अनंत जन्म, यानी कि जो इसी जीवन में सततम कीर्तन करना सीख जाता है तो ये अन्य जन्मों की तो आवश्यकता रहती है। फिर भी यदि भगवान के भक्त को किसी भी प्रकार का योगदान देना है हरि कीर्तन की महिमा बढ़ाने के लिए, तो चाहे वो श्राप हो या आशीर्वाद हो, हरि कीर्तन के लिए ही होता है। जो भगवान की कीर्ति बढ़ाता है, क्योंकि अनंत कीर्ति है, कोई सीमा नहीं है कीर्तन। जो भी है वो कीर्तन होना चाहिए, अपने हर एक कार्य में हरि भगवान श्री कृष्ण की प्रशस्ति, इनके कार्यकलाप सिर्फ किताब में दिए है इतने ही, लेकिन किसी न किसी ढंग से भगवान की ओर ये सिद्धांत समझने के लिए हमें प्रयत्न में हमेशा बने रहने चाहिए। तो ये युग धर्म चैतन्य महाप्रभु ने 500 साल पहले लाए थे, यानी इसका मतलब है कि पहले नहीं था ऐसा थोड़ा है, लेकिन दब गया होगा, नहीं तो पूर्वकालीन जयदेव गोस्वामी इत्यादि चैतन्य महाप्रभु से पुरोगामी क्यों ना, हमें तो मिलते हैं। लेकिन जन सामान्य के लिए जब परेशानियां अधिक अधिक बढ़ जाती हैं, तब हरि कीर्तन का प्रवाह भी ज्यादा बढ़ने लगता है। कलयुग तो दोषों की निधि बताई है, एक ही महान गुण है, कीर्तनाद एव कृष्णस्य मुक्त संगम परम ब्रजे। न तो विष्णु न राम न कोई शिव जी ब्रह्मा जी किसी के कीर्तन की बात नहीं की है। इसका मतलब ये नहीं है कि इनके कीर्तन यदि भगवान के साथ संलग्न कुछ चुकता है तो न करना चाहिए, नहीं। इसका मतलब है कि कृष्ण ही सर्वोपरि है, इनकी बात करेंगे तो ये सब आ जाएंगे, सबका कीर्तन हो जाएगा, क्योंकि इन्होंने ही तो कीर्तन की प्रशस्ति बढ़ाई है। श्रीमद् भागवत में हरि कीर्तन के अलावा क्या है? किसी न किसी ढंग से श्रवताम स्वकथाम कृष्ण पुण्य श्रवण कीर्तन, पुण्य श्रवण कीर्तन। कीर्तन करना भी पुण्यशाली तो है, लेकिन श्रवण करना भी कितना पुण्यशाली। लेकिन हमें ये कीर्तन के प्रति ही जिस प्रकार हम कीर्तन को दिव्य समझते हैं, हल्ला गुल्ला नहीं करते हैं, धक्का मुक्की नहीं करते हैं, और हृदयंगम करते हैं, तभी फायदा होगा। सताम प्रसंगाम मम वीर्य संविदः, कीर्तन में भगवान की शक्ति का परिचय है और सत्संग में ही प्राप्त होता है। भवंति हृदय कर्ण रसायन कथा, हृदय और कान के बीच में जो संचार करने वाले हैं वो होना ही चाहिए। तज्जोषणावम अपवर्ग करता है, तब कीर्तन की जो महिमा, इनका जो इनकी जो इन्फ्लुएंस है कीर्तन के आध्यात्मिक इनका प्रभाव है, वो जब कान और हृदय में संचार करता है तब हमारी मुक्ति का मार्ग खुला होता है, नहीं तो नहीं। बहु जन्म करे यदि श्रवण कीर्तन तो बुद्ध न पाए कृष्ण पदे प्रेम धाम। भगवान के नाम की कीर्तन की महिमा जानकर ही हमें स्वीकारना चाहिए, इतनी तो बुद्धि रखनी चाहिए। जो समझते हैं कि चलो लोग बेवकूफ हैं, इनको कुछ आता नहीं, पंडिता आती नहीं, तो कीर्तन करने दो, तो लेकिन बेवकूफ वो है जो कीर्तन करना नहीं चाहते। कीर्तन की महिमा सर्वोपरि है, जो कीर्तन ही भगवान के गुणगान का एक माध्यम है, एक ही मात्र माध्यम है। तो ये ना बताकर हम अन्य दोषारोपण करते हैं तो उसे फायदा क्या है, चाहे वो निर्गुण तत्ववादी हो या मायावादी हो या नास्तिक हो, हरेक को अंततो गत्वा हरि नाम का कीर्तन करना ही पड़ता है। नास्तिक बुद्धिस्ट लोग को भी माला पर कीर्तन करते हैं, मायावादी लोग या शिव जी को मानने वाले वो भी मन के फेरते हैं, जो पॉलिटिशियन है पाकिस्तान में वो भी माला फेर कर करना चाहता है, क्योंकि जो प्रिंसिपल है सिद्धांत है कीर्तन के अलावा भगवान की प्रशस्ति, इनके दिव्य गुणों की चर्चा इत्यादि गहराई से उसे जब करवाते हैं तो अवश्य उसे ही फायदा होता है, उसे ही प्रणत क्लेश नाशाय गोविंदाय। ये कीर्तन पे हमें प्रणति करनी चाहिए, नहीं तो क्लेश भी नाश नहीं होते। जो लोग बहादुर नहीं है, इनकी बहादुरी कहां बतानी है, कीर्तन करने में ही बता। सब गाते हैं तो चलो मैं गाऊं तो क्या फर्क पड़ जाएगा, करके गाते नहीं तो फर्क तो उसमें ही नहीं पड़ेगा, बाकी दूसरों पर तो पड़ेगा। जो नहीं करता है उसे कोई फायदा नहीं मिलता। नारद मुनि को अपने पूर्व जीवन का वृत्तांत कैसे याद आया, अर्जुन भी एक विशुद्ध भक्त है, नारद मुनि भी विशुद्ध भक्त है, एक को याद है दूसरों को नहीं है, क्या कारण क्या है। महाभारत में तो ये बताया कि बारंबार युधिष्ठिर को अपने भाइयों को याद दिलाना पड़ता था कि देखो ज्यादा विरोध मत करा करो, जो सामने आता है वो भगवान द्वारा ही तो नियंत्रित होता है, तो भगवान जब सारी जीवन की घटमाल में साक्षी रहते हैं, क्योंकि वही उसकी धारणा के अनुसार ही काम होता है। तो हमें ये सब स्वीकारना चाहिए, उससे डरने की कोई आवश्यकता नहीं, उसे स्वीकार कर इनके पक्ष में रहकर ही हम जीत जाएंगे। अज्ञानता भगवान के बारे में भी भुला देती है, खुद के बारे में तो भुला देती है लेकिन भगवान के बारे में भी भुला देती है। तो इतनी अनादिकाल से हम भूलते भूलते इस मनुष्य जीवन में आए हैं और हमें यही कीर्तन के लिए दिव्य शक्ति का परिचय कराने वाले श्री प्रभुपाद जब हमारे बीच में होते हैं, इनकी शिक्षा इत्यादि जब आती है तो हमें कंजूस बनने की क्या आवश्यकता है। गुरु कृपा हमेशा निशुल्क होती है, कोई देना नहीं पड़ता। बोलो हरे कृष्णा। कुछ खर्चा है? खर्चा का कोई कारण नहीं होता, लेकिन दूसरी सारी चीज खर्चा देना पड़ेगा, यानी कि वो कीर्तन नहीं कहलाता। जिसमें आपकी शक्ति का व्यय हो वो कीर्तन नहीं कहलाएगा। कहते हैं कि भगवान का नाम से क्या पैदा होता है, भगवान का नाम ही तो न, तो भगवान का नाम लेने के लिए कोई खर्चा करना पड़ता, क्योंकि भगवान का नाम ही पैदा होता। लेकिन इसी नाम में ही तो सारी शक्ति, नाम नाम कारी बहुधा निज सर्व शक्ति तत्रापि नियमेन स्मरणेन एतादृशी तव कृपा भगवन ममापि दुर्दैवं ईदृशं इहा जनानुराग। दुर्दशा तो यहां नारद मुनि को याद आया तो हम क्या उसके साथ आर्ग्यूमेंट करके, ए भैया तू कहां से गप्पे मार रहा है कि तुझे तेरा पूर्व जन्म में ये हुआ था, कोई तो कहता है कि अरे ये तो सिर्फ कहानी ही होती है, उसे क्या फायदा। पर जो जीवन अनंत काल का है, बारंबार हमें शरीर धारण करने की जब फर्ज आ जाती है तो फिर याददाश्त आती है, चली भी जाती है, नहीं जिंदगी में जो जो इच्छा करके हम शरीर त्याग करके तो वही चालू रह जाती है और दूसरा जन्म में वही मौका मिलता है। यम यम वाप स्मरण भाव त्यजंत अंत्य कले तम तम तमय वही थी कौन थे सदा तद्भाव पावित्र, सदा यानी हमेशा के लिए, एक जन्म के लिए थोड़ी है, सदा यानी कि हमेशा के लिए। यहां कुछ भी टेम्पररी नहीं है, हाँ खाली बदलाव आता रहेगा जाता रहेगा, लेकिन आत्मा का तो कोई बदलाव नहीं है। जो भूल गया है उसे ही वापस लाना है, और जो भूला नहीं है और कुछ याद करता है कि क्या अपने ये पूर्व काल में हमने ये बड़ी गलती करी थी, देखेंगे आगे आगे बढ़कर आप जानोगे कि कौन सी गलती थी। कीर्तन करने में जाने अनजाने में भी जो अपराध होते हैं इनकी तो याद कराते हैं कि नहीं। कीर्तन में भी बहुत नियम होते हैं, संकीर्तन में भी होते हैं, शुरू में कोई नियम बाध नहीं, फिर भी यदि जो हमें ये डिसिप्लिन चालू रखनी है, डिसाइपल बनना है, तो नियम बाध आएंगे, ये कोई विरोधाभास थोड़ा है। जो नियमित रूप से भगवान के नाम की महिमा जाने बिना माला करने में कोई नियम बाध नहीं, लेकिन माला पर नियमित जाप करने के लिए तो हर रोज निवेदन करते हैं कि किस तरह माला पर जाप करना चाहिए, सिखाते हैं। क्या फायदा होगा? यही सारी बातें कि हमारी जो हम जो भूल गए हैं उनको पुनः जागृत करने हैं। सारी दुनिया में सब जगह आप जाओ, जो जो शिक्षा पद्धति है उसके पीछे एक ही रहस्य होता है कि ये शिक्षा क्यों देनी चाहिए। शिक्षा देने के लिए जो हमें हेतु है कि ये याददाश्त पुनः आ जाए, जो भूल गए हैं उसको पुनः याद करना होता है, नहीं तो ये घटमाल तो चालू रहेगी। हाँ, ब्रह्मा जी के एक ही दिन में कितने चक्कर काट चुके हैं, एक ही दिन में 12 घंटे में। तो इस कलयुग की महत्ता हमें जाननी चाहिए, वृंदावन की महत्ता भी जाननी चाहिए। यहाँ कीर्तन के अलावा कुछ नहीं होना चाहिए, दंगे फिसाद झगड़े हैं तो भगवान की महिमा को प्रकाशित नहीं करता। भगवान ये सारी जो अपने आप को प्रकाशित करने की शक्ति खींच लेते हैं। इदम तु ते गुह्य तमाम प्रवक्ष्यामि अनसूयवे, ईर्ष्या रहित होने का सर्वप्रथम हमें अनुरोध होता है। यदि जिन्होंने यहां से कोई अन्य जगह में यही वातावरण पैदा करना है तो ईर्ष्या रहित होने की आवश्यकता होती है। प्रभुपाद जी के हृदय में कोई भी ईर्ष्या नहीं है कि परदेशियों को क्यों कहें क्या नहीं, हर एक जीव मात्र, क्योंकि अंग्रेजी में प्रचार करो उसमें सब कुछ आ जाता है। तो किसी के लिए प्रभुपाद जी के हृदय में कोई बेर भावना इत्यादि नहीं थी। हाँ, उसको कोसना पड़ता है, कोसना तो सबको पड़ता है क्योंकि देह है, और जब तक दिमाग भी देह दैहिक भावना से ही जुड़ा हुआ तो हमसे भी कुछ गलती हो जाती है, तो उसमें खरी खोटी किसी को सुनाने की क्या आवश्यकता है, विश्लेषण करने की आवश्यकता ही नहीं होती। तब भक्तगण चुपचाप सारी परिस्थितियों को झेलने की जब आदत बनाता है तब बहुत बड़ा फायदा होता है, क्योंकि वो स्मृति हमेशा बनी रहेगी जिसको हम भूल चुके हैं। तो इस तरह हमें शायद इसी जन्म में अपने पूर्व वृत्तांत की याद आती नहीं। जब हमने संन्यास लिया तो संन्यासियों को अपने पूर्वाश्रम की कोई बात दोहरानी नहीं चाहिए, न तो उसके बारे में कुछ पूछा भी किसी को करनी नहीं चाहिए। फायदा क्या रहेगा भाई, आप पूर्वाश्रम में क्या थे? तो कहेंगे फेलियोर, जो संसार में फेल होता है वो संन्यास ग्रहण करता है। शिक्षा, यानी कि प्रकृति भी शिक्षा देती है माँ की तरह। सबके बारे में सोचना चाहिए। एक तो हम झूठे इरादे से हमें सिखाया गया, अब जब लात पड़ती है तब सही दिशा में जाने के लिए प्रयत्न करते हैं। बहुत अन्य अन्य हेतु के लिए भी इस कौन में हम ज्वाइंट होते हैं, पर लेकिन सबकी फिल्ट्रेशन हो जाती है। क्या है, कहां तक पहुंचे हैं, क्या करने के लिए तैयार है। प्रभुपाद जी के लिए जीवन न्योछावर करोगे, संकीर्तन करोगे, तैयार ही रहना, कभी भी बुलावा आ जावे। ये नारद मुनि को निमंत्रण आए, बुलावा ही तो आया है, और देखो इसमें उसको भौतिकता के रंजित उसमें आकर्षण रह जाता है, तो डांट खाने के लिए भी तैयार है ना। क्योंकि सभी को यदि डांट मिलती है तो प्रभुपाद जी की ये संस्था में अपने वरिष्ठ गुरु बंधुओं से हमने सीखा है, यदि प्रभुपाद किसी को डांट मारते हैं तो जिन जिन को डांट पड़ी है, जिन जिन को अनुभव हुआ है, जिन जिन ये चीज समझते हैं कि डांट की आवश्यकता क्या है, प्रेम से नहीं समझा सकते हैं। प्रभुपाद जी क्या कहते हैं, लाल ने बहु दोषा ताड़ने बहु गुण तस्मात पुत्रम च शिष्यत्वम ताड़े न तो लाल। ताड़न करना कोई कॉर्पोरल पनिशमेंट नहीं है, ए पीटो इसको नहीं, लेकिन शब्द बाण से उसे बेहाल कर दो। प्रभुपाद जी की तो एक नजर जो खुली आंखों से करते तो उसके हृदय में ही तीर भोंक जाता है, कुछ गलती की। तो जब किसी को डांट पड़ती थी तो ये सारे भक्तों को पूछो वो क्या करते थे, महोत्सव बनाते थे। अरे तू कितना नसीबदार, गुरु महाराज की डांट आज तुझे मिली, ऐसा कि एक भी फिक्का पड़ जाता है। ऐसी डांट खाने से तेरा सद्भाग्य खुल जाए। तो यहाँ के कोई किसी को डांट मारे तो बुरा लग जाता है, गुरु से भी विमुख हो जाते हैं। यह कलयुग बढ़ता जा रहा है लेकिन डांट का महत्व कोई समझता नहीं। ये नारद मुनि को कैसी डांट पड़ती है देखना। अपने सारे गुरु भाई ज्यादातर अंग्रेज ही रहे हैं, वो तो कहते ये तो सॉस मिला है, सैंडविच है ऊपर सॉस डाल देने, सॉस मीठा होता है, तीखा भी होता है, तो जब ये मिला ये तो सॉस, ओ ही गॉट सॉस, लेट्स एंजॉय। तो गलती क्या है उसका विश्लेषण नहीं करते, लेकिन सॉस मीठा है तीखा है उसका विश्लेषण करते, लेकिन जो मिला वो गुरु कृपा कहलाती है। ताड़ने बहु गुण, सोच मिलते बहुत सारे गुण प्रकट होने लगेंगे, नहीं तो ये छोटे छोटे ललकार या बच्चों के सदा तरह हम पटवाना चाहते हैं वो ठीक नहीं। प्रभुपाद जी समझ जाते हैं, ज्यादा बोलते नहीं, पर फिर भी कल हमारे गुरुपाद ने बताई एक बात कि प्रभुपाद जी सैन फ्रांसिस्को में थे तो सुबह पैदल मॉर्निंग वॉक करने जाते थे गोल्डन गेट पार्क में। तो ये कहता है कि मैं भी एक दिन घुस मारी है ना, घुस गया और पीछे पीछे चलने लगा है। तो एक बार ऐसा हुआ कि प्रभुपाद जी आगे चलते थे, मैं पीछे चलता था और अनायास ही मेरा पांव प्रभुपाद जी के पांव में जो जूती पहनी थी उस पर लग गया, जूती निकल गई, प्रभुपाद जी आगे निकल गए। बाद में प्रभुपाद खड़े हो गए, देखा देखने लगा। ऑलवेज वॉक 3 feet बिहाइंड योर गुरु, 3 कदम तुम पीछे ही चलो। मेरी जूती में पांव रखने की हिम्मत नहीं कर पा, तो यानी कि ये सोच मिल गया। वो तो बर्फ जैसा इसकी हालत हो गई है, कितनी बड़ी गलती कर दी। लेकिन सबक मिला, आज भी उसे याद है। तो क्या अगले जन्म में याद नहीं रहेगा? ऐसा सोच पढ़ना जो जन्म जन्म याद रहे, ऐसा अनुभव हो। तो कहने का मतलब है कि मैं भूल गया हूं, ये तो पशु दशा कहलाती है। पशु को याद नहीं होता, हमें तो जीने का मतलब भी सिखाया जाता है। जो पशु को किसी को कोई सीखने का होता ही नहीं, कुदरत ही सिखा देती है, अपना रक्षा कर लेती है। लेकिन हमें तो शिक्षा कैसे जीना है उसकी दी जाती है। तब भारत भूमि ते होइल मनुष्य जन्म जार, जन्म सार्थक कर परोपकार। सभी जो भारतवासी हैं तो ये शिक्षा प्रणाली पहले से ही हमें प्राप्त हुई है। जाने अनजाने में विषय यदि दूर करे तो भी विषय बारंबार आके गिरता है। शास्त्र या कोई भी कोई मायावादी भी हो कि नहीं, अंत नारायण स्मृति होनी ही चाहिए तभी उद्धार होगा। तो जब हमेशा हम स्मृति साथ में लेकर चलते हैं तो जीवन का यही जीते जी ही विमुक्ति का कारण बन जाता है। और भगवत प्रेम के लिए हमें ऐसा मौका मिलता है तो एक बूंद भी एक छोटे जीवात्मा के लिए काफी है, तो वो कितनी बांट सकता है। तो कंजूस मत रहना, भगवत प्रेम थोड़ा भी तो मिलता है ही। और कभी ये नहीं कहना कि हमें नहीं मिला, संग्रहित करो, सारग्रही मधुकर बनने की आवश्यकता होती है। हमेशा याद रहना ही चाहिए। मूड मनुष्य बोल सकता है, आप लोग कोई मूड नहीं है और फिर से मूर्ता में जाने की आवश्यकता भी नहीं है। हरे कृष्णा। किसी को कोई प्रश्न है?
महाराज जी, आपने संकीर्तन के महत्व पर और हृदय का वैक्सीनेशन करके बहुत अच्छा उद्बोधन दिया। आज मार्च से उसका प्रथम दिवस है। एक बहुत ही गंभीर और आवश्यक जिज्ञासा है। जैसे आपने कहा कि संन्यास लेने के बाद हमें किसी भी व्यक्ति के पास अपने पूर्व आश्रम की चर्चा में किसी को हमारे पूर्व आश्रम के बारे में पूछना ही नहीं चाहिए। कई बार जैसे हम लोग जाते हैं तो आदमी से भक्ति साधना की बात करिए, करते करते 10-15-20 मिनट के बाद आप पहले कहते हैं घर में कौन लोग हैं, माता जी जीवित है, पिताजी स्वर्ग पधार गए कि नहीं, तो हमें इसका जवाब कैसे देना चाहिए। कई जगह तो हम सीधा भी बोल देते कि नहीं इन सब बातों से आपका क्या लेना देना, कई जगह वो कोई डिग्निटरी होती है, हम अगर ऐसा बोल दें तो उसको हमारी बात चुप जाएगी, वो नाराज भी हो जाएगा, इसके संदर्भ में आप मार्गदर्शन प्रदान करें। हरे कृष्ण महाराज जी,
इसके संदर्भ में कोई आपत्ति नहीं, आप पूर्वाश्रम की बात करें क्योंकि संन्यास नहीं है। यदि संन्यास को पूछता है तो वो बेचारा चुप करके आगे चला जाता है। यदि दोहराने से भी या सुनने से भी बचता है तो समझो एक बार उल्टी कर दी है, वोमिट कर दी है, उसे फिर से खाने की क्या आवश्यकता है, वो तो कुत्तों की बिल वांता से कहलाता। तो गंभीरता तो होनी ही चाहिए, लेकिन ब्रह्मचारी वानप्रस्थ कर सकते हैं, आपके लिए वो गंभीर विषय नहीं है। जब संन्यास लोगे बाद में वो सारी गंभीरता लानी है।
आम जीवन में वो सन्यासी ही समझते हैं, वो ज्यादा अंतर नहीं जानते ब्रह्मचारी और सन्यासी में भेद क्या है।
वो तात्विक होता है, जिसको तत्व का परिचय ही नहीं है, इनको समझाओ ठीक है, आपने घरबार थोड़ा त्याग कर दिया, वानप्रस्थ आश्रम में भी कोई घरबार का त्याग नहीं करता। जिनकी बुद्धि यस्यात्म बुद्धि कुण पेदी धातु के स्वती कलत्रा बहुत मत त्याग कर दिया, या तीर्थ बुद्धि शरीर न करी तब तक तो जनेशु अभिज्ञेशु स एव गोखर। जो अपनी बुद्धि पवित्र साधु संघ से बनाता है तो वो पवित्रता का परिचय है, विरक्ति से ही तो आएगा। इनको फिर से अंदर डालने की क्या आवश्यकता है। संन्यासाश्रम इत्यादि तो औपचारिकता ही है, यहां दे दो भाई माइक दो।
नाम का ही मौला नहीं चल सकती है, उसके भी कोई नियम भी नहीं है। जैसे दुआ मतलब एक डेढ़ बजे हो जाते हैं तो बिना स्नान करे जाप वगैरह कर सकते हैं।
कब तक नियम होते हैं, कब तक नियम नहीं होते हैं। श्रद्धा के लिए कोई नियम और बाध नहीं है, लेकिन श्रद्धा दृढ़ करनी है, आगे विकास करना है तो नियम बात लगेंगे। शुरुआत में कोई नियम नहीं होता, लेकिन ये लोग जब दीक्षित होकर भी ये बहाना निकालेंगे कि नियम बात नहीं है तो वो उसका विकास नहीं होगा, देख लेना, क्योंकि उसने उसको दिशा मिल रही है और किस तरह देखना है हरि नाम की, तो उसकी महिमा दीक्षा लेने के बाद ही तो उसे पता चलेगा ना। हरि नाम का बल मिलेगा, गुरु का बल मिलेगा, आगे विकास करेगा, भगवान नाम की जो शुद्धता है वो लेकर क्या क्या उसे अपराधों से बचना पड़ेगा और सब स्थापित करना पड़ेगा। तो नियम बात आते हैं, पहले नहीं आते।
हरे कृष्ण, संकीर्तन में कोई नियम है? संकीर्तन में
बहुत सारे नियम है,
वो बताइए।
हाँ, समूह में कीर्तन करना है तो किसका करना? भगवान का नाम गुण, तो नाम गुण कीर्तन वो अपनी खुशी के लिए नहीं करना होता है, भगवान की प्रियता प्राप्त करने के लिए होता है। जो कोई अपनी खुशी के लिए करता है तो गया काम से विकास नहीं होगा। नारद मुनि का ही आएगा प्रसंग, किसी और ढंग से आकर्षित हो गया था। वो भूल जाता था बारंबार, क्यों भगवान कौन है वो भी तो भूल गया था ना अपनी मित्रता के दावे पर। बाद में तो विश्वरूप बताया तब उसकी अकल ठिकाने आई। लेकिन वो मित्रता का फायदा है ना, कोई आलतू फालतू से मित्रता नहीं की है उसे, भगवान से की है, इसलिए भगवान माफ भी करते हैं उसे, आगे भी बढ़ाते हैं, ठपकाते हैं, डांट भी लगाई ही ना। अस्वच्छानंद स्ट्रॉन्ग प्रज्ञावान डांट ही तो मारी थी, और क्या किया था? सारी उसके मन में जो भौतिक भावना है इनको दूर करने के लिए। एक बार अर्जुन आया था द्वारका भगवान से मिलने, वो भगवान के रुक्मिणी के घर में ही विश्राम करता था, तो रुक्मिणी अचंभे में आ गए हैं कि इसके सारे रोम रोम में हरे कृष्ण बोल रहे हैं। तो वो 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 क्या चीज, वो तो बाद में जब उसकी अकल ठिकाने आई थी तब वो विशुद्ध प्रेम में, मित्रता के प्रेम में उसका वर्तन बताया जाता है। हरे बोल। यस आप कितनी तरह अपनी अभिव्यक्ति करते हैं? आपकी अभिव्यक्ति यानी कि आपका परिचय किन किन ढंग से करते हैं? नो, वो अभिव्यक्ति नहीं है, मनसा वाचा कर्मणा तीनों द्वारा जीव अपनी अभिव्यक्ति करता है। तो आपके मन में भी यदि भगवान का नाम है, कर्मों में भी भगवान की प्रशस्ति है, और बोलती हैं तो भी उसमें, तो ये तादृपता कहलाते हैं। नहीं तो मुख में राम बगल में छुरी, ये अन्य अन्य हाउस वाइफ, अरे भगवान को हाउस वाइफ की क्या आवश्यकता है? आपकी आवश्यकता है।
जय अभी आपने बताया कि संकीर्तन या कीर्तन करते भगवान की भक्ति अर्थ कर रहे हैं, हमें जो इच्छा होती है कीर्तन करने की, यदि घर में हम साधना करते हैं तो हमें पता किसी तरीके हमारा अहंकार पोषण हो रहा है इसमें, तो हम अच्छा गा रहे हैं कि हमें सुख मिल रहा है, शांति मिल रही है, इसलिए हम कर रहे हैं कि भगवान की भक्ति अर्थ ही होगा।
अपने सारे भौतिक स्तरों को भेदने की आवश्यकता है, जो हरिनाम में सक्षम है, हरिनाम करते ही सक्षम होते हैं, नहीं तो अपनी सूक्ष्म भावनाओं रजोगुण द्वारा यदि हमारा अहंकार जकड़ा है तो उसको भी भेदने की ताकत तो हरिनाम में ही, तो वो आपको कब परिचय कराएगी? तमोगुण से हटकर रजोगुण में आना, रजोगुण से हटकर सात्विक अहंकार भी काम नहीं करवाता हमें। तब भगवान के लिए साहस करना और इनकी जो इच्छा है इसके अनुसार करना। आपको यदि भगवान की इच्छा का पता नहीं है तो आप गुरु की इच्छा ले लो। यदि गुरु भी नहीं है तो भक्तों की इच्छा क्या है उसके अनुसार का। आपकी इच्छा अंदर, क्योंकि नहीं तो अहंकार आएगा। तो बचन श्री प्रभुपाद की।